एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार श्रोताओं, और ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, विश्व व्यापार संगठन या WTO।
हाँ, ये नाम अक्सर सुनने में आता है, खासकर जब व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय तनाव की बात होती है, लेकिन ये है क्या, कैसे काम करता है, ये शायद बहुत लोग नहीं जानते।
बिल्कुल, और इसी को समझने के लिए हम आज बात करेंगे अमृता नारलीकर की किताबों पर आधारित स्रोतों की। उन्होंने WTO पर बहुत गहरा काम किया है। दो किताबें हैं, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन और द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड पैराडॉक्स।
अच्छा, और ये आज इतना जरूरी क्यों है, मतलब WTO के बाद आज क्यों करें? ये आजकल हम जो देख रहे हैं, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, या फिर देशों के बीच सामान कैसे आता जाता है, टेक्नोलॉजी का लेन देन, यहाँ तक कि जो दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें, ये सब कहीं ना कहीं WTO से जुड़ा है।
मतलब ये सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों का मामला नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ता है।
बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई बोरिंग नियमों की किताब नहीं है। नारलीकर बताती हैं कि ये असल में वैश्विक राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, तो आज हम इसी जटिल दुनिया को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेखिका से ही। अमृता नारलीकर कौन है ये और इनका नजरिया क्यों खास माना जाता है?
अमृता नारलीकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानी मानी विद्वान हैं। वो जर्मनी के गीगा इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष भी रही हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ाती रही हैं, मतलब उनका पूरा अकेडमिक करियर ही WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इर्द गिर्द रहा है।
और क्या बात उन्हें खास मनाती है?
दो बातें खास हैं, एक तो उनका बैकग्राउंड, वो भारतीय मूल की हैं, यूरोप में काम किया है, तो वो सिर्फ एक पश्चिमी चश्मे से नहीं देखती, वो विकासशील देशों की जो चिंताएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझती हैं।
अच्छा, तो मतलब वो जो अमीर और गरीब देशों के बीच का झगड़ा है, जिसे नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं, उस पर उनकी पकड़ मजबूत है।
हाँ बिल्कुल, और दूसरी बात, वो WTO को सिर्फ इकोनॉमिक्स के नज़रिए से नहीं देखती, उनका जोर इस बात पर है कि ये कितना ज़्यादा राजनीतिक है, कैसे देशों की ताकत, उनकी मोल भाव करने की क्षमता, वो जो ग्रुप बनाते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पहचान, ये सब WTO के फैसलों पर असर डालता है।
ये दिलचस्प है। आमतौर पर लगता है कि ये सब बस व्यापार के नियम हैं।
नहीं, नारलीकर कहती हैं कि नियम तो है, पर वो नियम बनते कैसे हैं, कौन बनवाता है, किसके हक में बनते हैं, ये सब राजनीति है।
तो फिर इन किताबों पर आधारित विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो क्या बताना चाहती हैं?
देखिए, इनका मकसद है WTO जैसी थोड़ी मुश्किल लगने वाली संस्था को आम लोगों के लिए समझना आसान बनाना। चाहे कोई स्टूडेंट हो, पॉलिसी मेकर हो, एक्टिविस्ट हो, या बस कोई भी जो जानना चाहता है कि ये दुनिया चलती कैसे है, व्यापार कैसे होता है।
और उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है, मतलब वो WTO के बारे में क्या निष्कर्ष निकालती हैं?
नारलीकर का मेन पॉइंट ये है कि WTO एक विरोधाभासी संगठन है, पैराडॉक्सिकल। ये जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना शायद व्यापार में पूरी अराजकता फैल जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं।
जरूरी भी और खामियों से भरा भी?
हाँ, और वो कहती हैं कि इसे सिर्फ एक टेक्निकल बॉडी समझना गलत है, ये असल में एक पॉलिटिकल स्टेज है जहां देशों के हित टकराते हैं, जहां पावर प्ले होता है।
तो WTO का जो मौजूदा संकट है, जिसकी आजकल बहुत बात होती है, उसे समझने के लिए ये नजरिया जरूरी है।
बिल्कुल, नारलीकर कहती हैं कि सिर्फ व्यापार के आंकड़े या नियम देखने से काम नहीं चलेगा, हमें इसके पीछे की पावर पॉलिटिक्स, इतिहास और अलग अलग देशों के जो अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनको समझना होगा। WTO एक तरह से दुनिया की हकीकत का आईना है, अमीर गरीब देशों का तनाव, चीन जैसी नई ताकतों का आना, राष्ट्रवाद का बढ़ना, ये सब उसमें झलकता है।
ठीक है, तो चलिए इस आईने में और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले, ये WTO हमारी रोज की जिंदगी के लिए मायने क्यों रखता है? किसी आम इंसान को इससे क्या फर्क पड़ता है?
फर्क तो बहुत सीधा पड़ता है। जैसे आप ये सोचिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है या जो टी शर्ट आपने पहनी है, वो कहाँ बनी, उसके पार्ट्स कहाँ से आए?
हाँ, अलग अलग देशों से आए होंगे।
बिल्कुल, ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि व्यापार के कुछ नियम हैं, कुछ तौर तरीके तय हैं। WTO यही काम करता है, नियमों का एक ढांचा देता है, इससे व्यापार में थोड़ी भविष्यवाणी करना संभव होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, रुकावटें कम होती हैं।
और अगर ये नियम ना हो तो?
तो सोचिए, हर देश अपने मनमाने टैक्स लगाएगा, अपनी नियम बनाएगा, व्यापार करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाएगा, खासकर छोटे और गरीब देशों के लिए तो बहुत ही मुश्किल। ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ जाएगा, जैसा हम देख भी रहे हैं।
तो ये नियम स्थिरता लाते हैं?
हाँ, WTO का तर्क यही है, प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और बाधाओं में कमी।
ये व्यवस्था बनी कैसे, इसका इतिहास क्या रहा है?
इसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हैं। दुनिया को फिर से जोड़ने की कोशिश में 1947 में एक समझौता हुआ, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये ज्यादातर पश्चिमी देशों का एक क्लब जैसा था।
उसने कुछ काम किया?
हाँ, काफी सफल रहा, खासकर इंडस्ट्रियल गुड्स पर टैरिफ कम करने में। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थीं, जैसे खेती और कपड़ों का व्यापार इसके दायरे से काफी हद तक बाहर था। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई देश नियम तोड़ता था तो उसे सजा देने का कोई मजबूत तरीका नहीं था।
अच्छा, तो इसीलिए WTO की जरूरत पड़ी।
बिल्कुल, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बहुत लंबी बातचीत चली, उरुग्वे राउंड जिसे कहते हैं, और फिर 1995 में WTO बना। ये GATT से ज्यादा बड़ा था, ज्यादा मजबूत था, और इसमें सेवाओं और बौद्धिक संपदा जैसे नए क्षेत्र भी शामिल थे।
और इसके काम करने के क्या सिद्धांत हैं? आपने कहा नियम बनाता है, तो किस आधार पर?
दो सबसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो भेदभावों को रोकने के लिए हैं। पहला है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन,
मतलब सबसे पसंदीदा देश।
हाँ, पर इसका मतलब उल्टा है। इसका मतलब है कि आप किसी एक देश को खास फेवर नहीं दे सकते। अगर आप अपने एक ट्रेडिंग पार्टनर को कोई छूट देते हैं, मान लीजिए किसी सामान पर टैरिफ कम करते हैं, तो वही छूट आपको अपने सभी WTO सदस्य पार्टनर्स को देनी होगी। पक्षपात नहीं चलेगा।
ओके, सबके साथ बराबर का बर्ताव। और दूसरा?
दूसरा है नेशनल ट्रीटमेंट, यानी राष्ट्रीय उपचार। इसका मतलब है कि एक बार जब कोई विदेशी सामान या सेवा आपके देश के बाजार में आ गई, तो आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप अपने घरेलू सामान या सेवा के साथ करते हैं। कोई अंदरूनी भेदभाव नहीं।
ठीक है, तो मेहमानों के साथ भी अपनों जैसा सलूक।
हाँ, एक तरह से ये दोनों सिद्धांत व्यापार को ज्यादा खुला और निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं।
और मुख्य समझौते कौन से हैं जिनका जिक्र नार्लिकर करती हैं?
तीन मुख्य है, GATT जो सामान के व्यापार को देखता है, GATS जो सेवाओं जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, IT सेवाओं के व्यापार के नियम तय करता है, और तीसरा TRIPS जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह से जुड़ा है।
TRIPS तो काफी विवादों में रहा है, खासकर दवाओं को लेकर।
हाँ बिल्कुल, विकासशील देशों की चिंता रही है कि TRIPS की वजह से जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उन तक पहुंच मुश्किल हो जाती है। यहीं पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत और जेब पर असर डाल सकता है।
अब बात करते हैं WTO के दो मुख्य कामों की। एक तो आपने बताया नियम बनाना यानी बातचीत, और दूसरा है विवाद सुलझाना। ये कैसे होता है?
बातचीत का काम बड़े बड़े राउंड्स में होता है, जैसे दोहा राउंड था जो 2001 में शुरू हुआ था। इसमें एक सिद्धांत है सिंगल अंडरटेकिंग का।
वो क्या है?
इसका मतलब है नथिंग इज अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज अग्रीड,
यानी जब तक हर एक मुद्दे पर सारे देश राजी नहीं हो जाते, तब तक किसी भी मुद्दे पर हुआ समझौता फाइनल नहीं माना जाता।
अरे, ये तो बहुत मुश्किल होगा।
हाँ, और फैसले होते हैं आम सहमति से, कंसेंसस से, मतलब हर सदस्य देश के पास वीटो पावर है। इससे बातचीत बहुत धीमी हो जाती है और अक्सर अटक जाती है। दोहा राउंड के फेल होने का ये एक बड़ा कारण था।
और दूसरा काम विवाद सुलझाना, हाँ, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB। इसे WTO का क्राउन ज्वेल यानी ताज का गहना कहा जाता था। अगर किसी देश को लगता है कि दूसरा देश WTO के नियमों को तोड़ रहा है, तो वो यहाँ शिकायत कर सकता है।
फिर क्या होता है?
फिर एक पैनल बनता है, वो मामले की जांच करता है। अगर लगता है कि नियम तोड़े गए हैं, तो वो देश को नियम मानने को कहता है। अगर वो नहीं मानता, तो शिकायत करने वाले देश को बदले में व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की इजाज़त मिल सकती है। इसने कई बड़े झगड़े सुलझाए हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच केलों को लेकर हुआ बनाना वॉर।
लेकिन अब इसमें भी दिक्कत आ रही है?
हाँ, पिछले कुछ सालों से, खासकर अमेरिका के रवैये की वजह से, इसका जो अपीलीय निकाय था, मतलब जहाँ आखिरी अपील होती थी, वो लगभग ठप पड़ गया है। जजों की नियुक्ति ही नहीं हो पा रही, ये WTO के लिए बहुत बड़ा झटका है।
तो यही वो विरोधाभास है जिसकी बात नार्लिकर कर रही थी कि एक हिस्सा विवाद निपटान सफल रहा पर दूसरा नियम बनाना अटक गया।
बिल्कुल, एक तरह से WTO की अदालत तो चल रही थी पर संसद काम नहीं कर पा रही थी, और अब तो अदालत पर भी संकट है।
आपने शुरू में कहा था कि नार्लिकर राजनीति और पावर प्ले पर बहुत जोर देती हैं, ये WTO में कैसे दिखता है? क्या वाकई सब देशों की बराबर चलती है?
नार्लिकर साफ कहती हैं, नहीं। शुरू में तो क्वाड देश, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, इनका पूरा दबदबा था। वही एजेंडा तय करते थे, मीटिंग्स अक्सर बंद कमरों में होती थीं, जिन्हें ग्रीन रूम कहा जाता था। बाकी देशों को लगता था कि उन्हें बाहर रखा जा रहा है।
तो विकासशील देशों ने क्या किया?
उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, गठबंधन। जैसे कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर भारत और ब्राजील ने मिलकर G20 ग्रुप बनाया, अफ्रीकन ग्रुप है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, G90 है। इन ग्रुप्स ने विकासशील देशों को अपनी बात रखने के लिए एक आवाज दी। यही नार्लिकर का विश्लेषण आता है। वो दिखाती हैं कि ये जो व्यापार वार्ताएं होती हैं, ये कोई सीधी सादी तकनीकी बहस नहीं होती, ये असल में राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं, जहां देश अपने हितों के लिए लड़ते हैं, मोलभाव करते हैं, दबाव बनाते हैं।
और इसी वजह से दोहा राउंड, जिसे डेवलपमेंट राउंड कहा गया था,
वो फेल हो गया।
हाँ,
काफी हद तक। दोहा राउंड 2001 में शुरू हुआ था और उसका मकसद था विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखना, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा।
क्यों? मुख्य मुद्दे क्या थे?
मुख्य टकराव थे अमीर देशों द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी, जिसे भारत जैसे विकासशील देश कम करवाना चाहते थे, और दूसरी तरफ विकासशील देशों के औद्योगिक बाजारों तक पहुंच, जिसे नामा कहते हैं, जिसे अमीर देश ज्यादा खुलवाना चाहते थे।
लेकिन ये तो तकनीकी मुद्दे लग रहे हैं
दिखने में, पर नार्लिकर कहती हैं कि इनके पीछे गहरा अविश्वास था। विकसित और विकासशील देशों के बीच हितों का टकराव था। ये सिर्फ नियमों की बात नहीं थी, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने और अपने लोगों के हितों की रक्षा करने की लड़ाई थी। दोहा ने पुरानी और नई ताकतों के बीच की खाई को उजागर कर दिया।
WTO की आलोचना भी तो बहुत होती है, किस तरह की?
हाँ, आलोचना दोनों तरफ से होती है। जो लेफ्ट या उदारवादी आलोचक हैं, वो कहते हैं कि WTO बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे को ज्यादा अहमियत देता है और मजदूरों के अधिकारों, पर्यावरण या आम लोगों की सेहत को नजरअंदाज करता है, जैसे वो श्रिम्प टर्टल केस का उदाहरण देते हैं।
और दूसरी तरफ से
जो राइट या राष्ट्रवादी आलोचक हैं, वो कहते हैं कि WTO देशों की संप्रभुता, सॉवरेंटी को कमजोर करता है। मतलब एक बाहरी संस्था कैसे किसी देश को बता सकती है कि वो क्या करें, और वो भी एक ऐसी संस्था जिसके अधिकारी चुने हुए नहीं हैं। लोकतांत्रिक घाटे की भी बात होती है कि फैसले पारदर्शी तरीके से नहीं होते, ग्रीन रूम जैसी चीजें होती हैं।
इस पर नार्लिकर क्या कहती हैं?
वो मानती हैं कि कई आलोचनाएं सही हैं, लेकिन वो ये भी इशारा करती हैं कि कई बार WTO को बलि का बकरा बना दिया जाता है। असली दिक्कत शायद सदस्य देशों की अपनी नीतियों में होती है, पर वो ठिकरा WTO पर फोड़ देते हैं।
तो कुल मिलाकर आज WTO कहाँ खड़ा है? क्या ये वाकई संकट में है?
स्रोत तो यही बताते हैं कि हाँ, WTO आज एक गहरे संकट से गुजर रहा है। 2008 के आर्थिक संकट के बाद से संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ा है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने तो MFN जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
और वो विवाद निपटान वाला संकट भी है।
हाँ, अपीलीय निकाय का ठप होना बहुत बड़ी बात है। फिर ई कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज जैसे नए मुद्दे हैं जिन पर नियम बनाने में WTO संघर्ष कर रहा है। और साथ ही दुनिया भर में रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, RTAs बढ़ रहे हैं, जो WTO को साइडलाइन कर रहे हैं।
तो क्या ये WTO के अंत की शुरुआत है?
नार्लिकर का निष्कर्ष थोड़ा संभला हुआ है। वो मानती हैं कि WTO में गंभीर समस्याएं हैं, इसे सुधार की सख्त जरूरत है, लेकिन उनके मुताबिक इसके बिना दुनिया शायद और ज्यादा खतरनाक और अस्थिर हो जाएगी। खासकर छोटे देशों के लिए अपनी बात रखने का ये अब भी एक जरूरी मंच है, तो ये खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे बदलना होगा, आज की दुनिया के हिसाब से ढलना होगा।
ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें अगर निकालनी हो तो क्या होंगी? What are the key takeaways?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और अहम बात यह है कि WTO एक राजनीतिक अखाड़ा है, सिर्फ एक आर्थिक या तकनीकी संस्था नहीं। पावर, इंटरेस्ट, गठबंधन, ये सब नियम तय करते हैं।
ये समझना जरूरी है। दूसरी बात,
नॉर्थ साउथ डिवाइड, यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो गहरा विभाजन और अविश्वास है वो स्थायी है और प्रगति में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत के नजरिए से देखें तो ये बहुत मायने रखता है, चाहे वो खेती की बात हो, सब्सिडी की या टेक्नोलॉजी की।
तीसरा पॉइंट,
कानूनीकरण का विरोधाभास, मतलब झगड़े सुलझाने वाला सिस्टम DSB तो काफी हद तक चला, लेकिन नियम बनाने वाला सिस्टम बातचीत ठप हो गया। एक तरह से कोर्ट चल रहा था, पार्लियामेंट बंद हो गई। इसका असर हम पर पड़ता है क्योंकि हमें व्यापार के लिए स्थिर और नए नियमों की जरूरत है जो बन नहीं पा रहे हैं।
और
चौथी बात कि WTO अपरिहार्य भी है और अप्रभावी भी लगता है, मतलब ट्रेड वॉर रोकने के लिए जरूरी है, पर आज की जो नई चुनौतियां हैं डिजिटल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, उनके लिए नियम बनाने में फेल हो रहा है।
और आखिरी
कि सुधार की बहुत सख्त और तुरंत जरूरत है, WTO को बदलना होगा ताकि वो आज की दुनिया की सच्चाइयों का सामना कर सके, और हमें ये देखना होगा कि ये सुधार भारत जैसे देशों के लिए फायदेमंद हो।
ये स्रोत कुछ बहुत अच्छे कोट्स या विचारों से भी भरे हैं, कुछ ऐसे विचार साझा कर सकती हैं जो नार्लिकर के तर्क का निचोड़ हों?
हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छा विचार है जिसे मैं अपने शब्दों में कहूँ तो, WTO कोई कोर्ट या बैंक नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली राजनीतिक सौदेबाजी है। इसके नियम कोई पत्थर के लकीर नहीं बल्कि देशों के हितों के बीच चल रहे संघर्ष का एक अस्थायी नतीजा मात्र है।
वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है, मतलब नियम बदलते रहते हैं जैसे जैसे पावर बैलेंस बदलता है।
बिल्कुल, एक और विचार विवाद निपटान के संकट पर है। विवाद निपटान निकाय WTO का ताज था। इसका हालिया लकवाग्रस्त होना दिखाता है कि जब सबसे ताकतवर सदस्य ही नियमों को मानने से इनकार कर दे तो नियम आधारित सिस्टम जिंदा नहीं रह सकता।
ये तो सीधे सीधे पावर पॉलिटिक्स की बात है, नियम तभी तक हैं जब तक बड़े खिलाड़ियों ने माने।
हाँ, और एक और, दोहा दौर इसलिए फेल नहीं हुआ कि तकनीकी बातें मुश्किल थीं, बल्कि इसलिए कि उसने पुरानी नियम बनाने वाली अमीर ताकतों और नई नियम बनाने के लिए मेज पर जगह मांगने वाली उभरती ताकतों के बीच विश्वास और दुनिया को देखने के नजरिए की गहरी खाई को उजागर कर दिया।
ये ग्लोबल पावर शिफ्ट और पुराने सिस्टम के एडजस्ट न कर पाने की कहानी है।
और आखिरी WTO की भूमिका पर एक संतुलित विचार। WTO आलोचकों के लिए विलेन है और समर्थकों के लिए हीरो। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक आईना है जो दुनिया की असमानताओं, ताकत के असंतुलन और मिलकर काम करने में आने वाली मुश्किलों को दिखाता है।
मतलब संस्था पर उंगली उठाने से पहले हमें दुनिया को और उसमें शामिल देशों को देखना होगा। बहुत गहरा विचार है।
तो इस सब बातचीत से आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, या कोई ऐसी बात जिसने आपको चौंकाया?
मेरे लिए शायद सबसे अहम बात ये एहसास है कि WTO जैसी संस्था चाहे कितनी भी कमजोर क्यों ना लगे, खासकर छोटे और विकासशील देशों के लिए कितनी जरूरी है। ये उन्हें एक आवाज, एक मंच देती है, और ये चिंता भी कि इसका भविष्य वाकई अनिश्चित है।
और मेरे लिए ये देखना कि राजनीति कितनी गहराई तक WTO के हर पहलू में घुसी हुई है, ये सिर्फ ट्रेड के आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पहचान, सत्ता और वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह बनाने की लड़ाई भी है, और ये भी कि सुधार जितने जरूरी हैं उतने ही मुश्किल भी।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी, बढ़ती असमानता, डिजिटल दुनिया के नए नियम, क्या WTO जैसे मौजूदा वैश्विक संस्थान इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं, या हमें ग्लोबल गवर्नेंस के, वैश्विक सहयोग के बिल्कुल नए मॉडल सोचने होंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।